अब आगे जी सबसे प्रोफाउंड स्ट्रॉन्ग हिस्सा शुरू हो रहा है सूरह तौबा का, और वो हिस्सा है जो गज़वाए तबूक से मुतल्लिक है। सूरह तौबा जो है ना, ये मुख्तलिफ टाइम मीराज में नाजिल हुई थी, पैकेजेस हैं, ये पार्ट एक टाइम। तो अब आयत नंबर 38 से 42 को देखते हैं, रुकू नंबर 12। यहाँ से अब बाकायदा तबूक का सफ़र शुरू होगा। मालों और जानों से जिहाद करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू महलकुम, ए ईमान वालो तुम्हें क्या हो गया है। अब यहाँ मैंने ज़रा सी टोन चेंज की है, आयत का नंबर लिख लें, सूरह तौबा की 38 है। एग्जैक्टली यही टोन आप मेरी लेंगे मुसब्बिहात पढ़ते हुए, वो कौन सी हैं, सब्बह लिल्लाही और युसब्बिहु लिल्लाह, और उसमें भी सबसे आखिरी सूरत हदीद। ये अंदाज आपको वहाँ बहुत हो, मालको ये हसरत का अंदाज होता है। आज भी आप अपने बच्चे को कहते हैं आपको हो क्या गया है, आपके इरादे क्या हैं, आप चाहती क्या हैं, बेगम आप चाहती क्या हैं, और मियाँ साहब आप मुझसे चाहते क्या हैं। बिल्कुल ये अंदाज, मालकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम्हें क्या हो गया है। ऐसे लगता है कि अल्लाह बड़े प्यार से कह रहा है, मुसलमानों तुम वो तो नहीं रहे जो थे, तुम्हें तो साहबा वाला कोई रंग ढंग नहीं दिख रहा, क्या हुआ हमें, अब फिक्र नहीं लगी आपको, मुझे तो लग गई है। तो हुआ क्या है कि जब तुमसे कहा जाता है कि चलो अल्लाह के रास्ते में कुछ करो, तो तुम ज़मीन से लगे जाते हो। क्या तुम आखरत के ही बस दुनिया की जिंदगानी पर ही गए हो, प्रेफर कर ली दुनिया आखरत के मुकाबले में। सुनो, दुनिया की जिंदगी तो आखरत के मुकाबले में कुछ यूं ही सी है, यानी बस बेकार सी। अगर तुमने कुछ ना किया तो तुम्हें अल्लाह ताला दर्दनाक सजा देगा, और तुम्हारे सिवा और लोगों को बदल लाएगा। तुम अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अगर तुम इन यानी नबी सल्लम की मदद नहीं करोगे, तो अल्लाह ही ने इनकी मदद की इस वक्त भी जबकि इन्हें काफिरों ने देश से निकाल दिया था, दो में से दूसरा जबकि वो दोनों गार में थे, जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम न कर कि अल्लाह हमारे साथ है। बस जनाबे बारी ताला ने अपनी तरफ से तस्कीन इस पर नाजिल फरमा कर इन लश्करों से इनकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। उसने कुफार की बात पस्त कर दी, और बुलंद और अजीज तो अल्लाह ही का कलेमा है, अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। इन फिरू, निकल खड़े हो जाओ, कैसे, हल्के फुल्के हो तो भी और भारी भरकम हो तो भी, यानी निकलना मुश्किल है तो भी, निकलना आसान है तो भी, और भारी भरकम हो तो भी, और राह रब में अपने माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम में इल्म हो। अगर जल्द वसूल होने वाला माल और असबाब होता और हल्का सा सफर होता तो ये जरूर आपके पीछे हो लेते, लेकिन इन पर तो दूरी और दराज की मुश्किल पड़ गई। अब तो ये अल्लाह ताला की कस्में खाएंगे कि अगर हम में कुव्वत और ताकत होती तो हम यकीनन आपके साथ निकलते। ये अपनी जानों को खुद ही हलाकत में डाल रहे हैं, इनके झूठा होने का सच्चा इल्म तो अल्लाह को है। ये है जी गज़वे तबूक का जिक्र। अल्लाह ताला ने गज़वे तबूक की इन बातों के साथ ही एक पैगाम दे दिया, और वो क्या है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलते वो मुजरिम बन जाते हैं। कब, जब उनके निकलने या ना निकलने से फ़र्क पड़ता हो। गज़वे बदर से बात शुरू हुई थी अनफाल में, जुमले याद कीजिए जो मैंने आपको बिल्कुल सूरह तौबा के शुरू के दौर को कैंट पे दिए थे, कि बदर पहली जंग, पूरी सूरत अनफाल और बदर के मामले में कोई एक मुनाफिक नहीं दिखा, निफाक का कोई तस्करा भी नहीं है आपके लिए गज़वे बदर में, होता भी कैसे, अभी तो हिजरतें करके छुपते छुपाते जान ईमान माल बचाकर आए हुए लोग थे, और बदर हो गई, कोई मुनाफिक नहीं था पूरे 13 साल के मक्का के दौर में, एक मुनाफिक नहीं था, क्योंकि उस वक़्त तो इस्लाम की कीमत कोड़े थे, इस्लाम की कीमत पे तो तकलीफें थी, वो थी। ये जो अशरा मुबशरा को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी ना, इसलिए कि वो पहचान गए थे कि ये शख्स है सच्चा। अल्लाह के नबी मशहूर नहीं थे, शोहरत नहीं थी, आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे, फेमस नहीं थे, आपके बहुत बड़े बड़े चैनल्स नहीं थे, आप सोशल मीडिया पर्सन नहीं थे, लेकिन अशरा मुबशरा पहचान गए ये बंदा कल कुछ करेगा। एक उस्ताद को पता लग जाता है, कि इतनों में ये एक कुछ करेगा। इसी तरह याद रखिए कि जिनकी फितरत सलीम होती है ना, उनको पता लग जाता है कि फलां बंदे के अंदर पोटेंशियल है। अच्छा, इसने दुकान नई नई खोली है ना, लेकिन इसका सौदा बड़ा अच्छा है और साथ कीमतें भी बड़ी मुनासिब हैं, और सबसे बढ़ के इसका अखलाक बड़ा अच्छा। देखना एक दिन इसकी दुकान सबसे बड़ी होगी, 2-3 साल बाद देखते हैं तो वाकई वो एक बड़ा स्टोर बना के बैठा होता है। साहबा की ये बहुत बड़ी खूबी थी, उन्होंने ऐसा ही किया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब चुना और जब ये सारे मामलात हुए, तो उसमें बदर से चलते चलते तबुक का मरहला आता, जिसमें हर एक को निकलना था। पीछे हमने साहबा के उस सारे मिजाज को अब तक समझ लिया है जो उनका अल्लाह के नबी के साथ 13 मक्का के और मदीना के सालों में था। सच्चे मुखलिस साहबा का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, देर इज़ नो प्रॉब्लम विद दम। जो कहा कर दिया, जहाँ बिठाया बैठ गए, जो सुनने को दिया सुन लिया, जो खाने को दिया खा लिया, जहाँ जाने से रोक दिया रुक गया। ये तो सब हम पढ़ेंगे 26वें पारे में इंशाल्लाह, कि काबा से बस थोड़े से फासले पे रोक दिया, आगे नहीं जाना तो नहीं गए। साहबा तो लगता है अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते थे, उनकी अक्ल पूरी तरह इस्लाम के आगे सरेंडर हो चुकी थी। अरबों ने बहुत कुछ किया, नसी की रस्में खेल दी, महीनों को आगे पीछे कर लिया, पैसा इधर से उधर कर लिया, ये वो कर करा के, इन सब को तो हमने स्किप किया। हम इस चीज़ पर आ गए, तबूक का मौका है। तबूक तक पहुंचने में इस्लाम के अंदर कुछ ऐसे लोग ऐड हो चुके थे, नंबर एक जो कमज़ोर ईमान वाले थे, और नंबर दो जिनमें निफाक का कीड़ा लग चुका था। ये जितनी आयतें पढ़े ना, ये सन 9 हिजरी में गज़वा तबूक के ज़िमन में उतरी। इस मौके पर मदीना के मुनाफिकीन की तरफ से जो अमल ज़ाहिर हुआ, उससे ये अंदाज़ा होता है कि कमज़ोर ईमान वाले लोग जब किसी इस्लामी मुआशरे में दाखिल हो जाते हैं तो नाजुक मौके पे उनका किरदार क्या होता है। जो फुली कन्विंस्ड नहीं होते ना, वो ऐसे मौक़ों पे इधर उधर हो जाते हैं, थिड़क जाते हैं। सच्चे पुराने ठुके हुए लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कुर्सी पे बिठाओ या ज़मीन पे बिठा दो, बिजली आए या ना आए, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। आप उनकी थोड़ी तनकीद भी कर दें तो बुरा नहीं मानते, थोड़ा झाड़ भी दें तो कुछ नहीं करते। मसला होता है नए नए लोगों का, कमज़ोर ईमान वाले। तो लिखिए इस्लाम से ताल्लुक के 2 दर्जे। एक, क्या सारी वफादारियाँ इस्लाम से वाबस्ता हो जाएं, इस्लाम उसके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाए। यह है पहली किस्म, जो आज आपने शुरू पारे से ही अपने लिए सोची हुई है। एक दूसरा ताल्लुक लिखिए, दूसरा ये कि इंसान की हकीकी दिलचस्पियाँ तो कहीं और अटकी हुई हों और ऊपरी तौर पे वो इस्लाम का इकरार कर ले। देखिए, मैं और आप यहाँ बैठे हैं ना, मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो मेरा कुरान पढ़ाना और आपको ये दौरे कुरान कराना और ये पारा लेना, इसके भी 2 ही दर्जे हैं। एक मेरी ख्वाहिश क्या है कि आपको कुछ मिल जाए। मेरा दिल दिमाग इसमें अटका हुआ है कि मुझसे पढ़ने के बाद भी ये महरूम ना रह जाएं, कल क़यामत के दिन ये मेरा दामन पकड़ लें कि अल्लाह गए थे दवाई लेने, मिली नहीं, या इन्होंने कुछ छुपा लिया, यादा दिया। कितने लोग सिर्फ रमज़ान ही में बेचारे कुरान सुन पाते हैं, सारा साल तो बहुत ही काम होते हैं। और भी अच्छा, तो मैं किस तरह पढ़ाऊँगी, क्या मेरी ख्वाहिश होगी जान छुड़ाओ, जल्दी जल्दी वक्त देखो, घड़ी देखो, गला खुश्क हो रहा है, सोच रही हूँ ये है मुश्किल है, बाद में सुन ले, नहीं, फिर तो मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूँगी कि आप जो मेरे पास आके बैठ चुके हैं, आपने मेरे पे एतबार जो कर लिया है, कोई वक्त कम कीमती। आप देखिए कि इस वक्त भी कितने हज़ारों लोग तो सिर्फ लाइव सुन रहे हैं, तो क्या आपका वक्त कीमती नहीं है? मुझे हक पहुंचता है कि मैं आपका वक्त ज़ाया करूं? अगर मैं 1 मिनट ज़ाया करूंगी ना, तो जितने लोग इस वक्त मुझे भी दिख रहे हैं 2-3 चैनल्स पर, जो नहीं दिख रहे उनका तो नहीं पता, कई हज़ार मिनट ज़ाया हो जाएगा आपका मेरा, तो मैं मुजरिम होंगी। मैं आपको कुरान पढ़ा के उठूंगी, लेकिन अल्लाह के फरिश्तों के पास जो मेरा नाम लिखा होगा ना, कि इनकी थोड़ी सी माइनस, यानी इनकी ज़रा नेगेटिव मार्किंग भी कीजिएगा प्लीज़। सवाब तो इनको बहुत सारा दे दीजिएगा, लेकिन ज़रा इधर उधर से इनके नंबर काट लीजिएगा कि इन्होंने इतने लोगों का 1 मिनट ज़ाया किया फजूल बातें करके या कुछ और करके। और दूसरी सूरत यह है कि मुझे तो बस जाना है, मुझे तो अपने पर कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही बेइज्जती और शर्मिंदगी और बुरी बात लगती है। लेकिन एक दफ़ा जहाँ दर्स होते हैं साथ ही रखवाते हैं। मैं तो बीच में एंड पे आती हूँ जब मेरा उन लोगों से इंटरेक्शन होता है, हमेशा प्रोग्राम दर्स इवन दौरे कुरान सब हमारे एडमिस के थ्रू होता है। एक किसी जगह कोई दर्स रखवाया हुआ था तो उन्होंने दर्स रखना था अपने घर, तो हमारी एडमिन से कहा कि आपकी उस्ताजा कितने पैसे लेंगी दर्स लेने के, क्या देना पड़ता है उनको, वो क्या लेती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके टेस्ट ऐसा हो चुका है कि पहले तो वो भड़क उठी, फिर जब वो मुझे बता रही थी तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। कहती नहीं, असल में हमने उनके बाद एक दुआ वाली बुलाई हुई है ना, तो उनको हम पैसे दे रहे हैं, और उनसे पहले एक ने नाते पढ़ने आना है तो उनको भी हमने कुछ देना है। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, माफ़ करें, आपको तो बुरा लग गया, और पैसे भी बराबर मिल रहे हो अमेरिकन डॉलर्स में बल्कि पाउंड्स में, तो फिर फ़र्क होता है। याद रखिएगा, माँ बाप और गैरों में फ़र्क ही होता है। माँ बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा दुनिया का बेहतरीन इंसान बन जाए, उसको बुरा लग रहा है तो लगता रहे, लेकिन वो ज़रूर उसको फजर भी उठाएगी कान से पकड़कर, उसको स्कूल भेजेगी। तो इस्लाम के साथ ताल्लुक का ये दर्जा नोट कीजिए, अगर तो पूरी तरह पहला दर्जा है आपका तो इस्लाम आपकी ज़िंदगी और मौत का मसला है, और दूसरी तरफ हकीकी दिलचस्पी आपकी कहीं और है तो जो इधर है। मैं पढ़ाऊंगी साथ, मैं मैसेज चेक करूंगी, मैं घड़ी भी देखूंगी, जाके बीच में कुछ ज़रा थोड़ा सा इधर उधर भी झांक लूँगा। मैं तो कर नहीं सक रही ना इस वक्त, लेकिन मेरी तवज्जो ही बढ़, मैं सोच लूँगी आज जाके क्या करना है, अच्छा रात को किधर जाना है, अच्छा घर में मेहमान आ रहे हैं उनको क्या खिलाऊँ पिलाऊँ, मेरी आज़ादी है। तो ये जो दूसरा दर्जा है ना, इस्लाम के साथ अगर ये स्टेज आ जाए, इसको निफाक कहते हैं, माजरत के साथ, ऊपरी तौर पे इस्लाम का इकरार और अंदर से दिल कहीं और अटका। लेकिन मिसाल अच्छी नहीं है, लेकिन मैं दूंगी। शादी होती है, एक लड़की अपना सब छोड़ छाड़ के शौहर के घर चली जाती है, एक बच्ची है जो पूरे दिल दिमाग से कबूल करती है, खुशी से शादी जाती है। क्या उसकी हर मुमकिन कोशिश नहीं होगी कि अपने शौहर को खुश करे, उस घर में अपनी जगह बनाए, उस घर को अपना घर समझे। एक दूसरी लड़की, खुदा न खास्ता, दिल कहीं और अटका हुआ था, कोई कॉलेज फ्रेंड पसंद था, किसी कज़न से मोहब्बत थी, माँ बाप ने ज़बरदस्ती कर कर आके शादी इधर कर दी, क्या इसका इस घर में रहना पहले जैसी होगा? सबको समझ आ गया, बस ये है इधर। पहली किस्म के लोग सच्चे मोमिन हैं, और दूसरी किस्म के लोग जिनको सच्चे मुनाफिक कहेंगे आप। मोमिन का हाल क्या है कि वो आम हालात में भी इस्लाम को पकड़े होता है, और कुर्बानी के लम्हात में भी वो पूरी तरह इस पर कायम रहता है। इसके बरक्स मुनाफिक का हाल क्या होता है कि वो बेज़रर इस्लाम, ये लफ्ज़ बेज़रर बड़ा बड़ा लिखिएगा, वो बेज़रर इस्लाम, या दूसरे लफ्ज़ों में कहे कि नुमाइशी दीनदारी में तो बहुत आगे दिखाई देता है, मगर जब कुर्बानी की सतह पर इस्लाम के तकाज़ों को इख्तियार करना पड़ता है तो वो पीछे हट जाता है, बैक ट्रैक। सॉरी सॉरी, अब आप कहेंगे वजह, इस फ़र्क की वजह मोमिन के सामने असल में आखरत होती है और मुनाफिक के सामने असल में दुनिया होती है। मोमिन आखरत की ना ख़त्म होने वाली नेमतों के मुकाबले में दुनिया की कोई कीमत ही नहीं समझता, इसलिए जब भी दुनिया की किसी चीज़ को वो देखता है कि वो उसके मकसद के रास्ते में रुकावट बन रही है, वो इसको ओवरलुक करके निकलता है। जैसे तेज़ गाड़ी चलाने वाला, उसके सामने कोई पत्थर आएगा वो गाड़ी इधर कर लेगा, कोई सामने उसके कोई बुर्जी सी आ जाएगी वो इधर से उधर हो जाता है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है रुकने का कि वो उस पत्थर से लड़े कि तुम इधर क्यों हुए। यानी मोमिन अपने मकसद के रास्ते में आने वाली चीज़ को देख के ना तो इधर निकल जाता है, कभी इधर निकल जाता है, नज़रअंदाज कर देता है। इसके बरक्स मुनाफिक ऐसे इस्लाम को पसंद करता है जिसमें दुनिया को बिगाड़े बगैर इस्लामियत या इस्लामाइजेशन का क्रेडिट मिलता हो, और इसलिए जब ऐसा होता है ना तो वो दुनिया को खो कर इस्लाम को पाता है, गोया कि वो दुनिया की तरफ झुक जाता है, चाहे इसके नतीजे में वो इस्लाम की रस्सी हाथ से छुट्टी जाए। तो ये जो इस्लाम और गैर इस्लाम की कशमकश के बीच के लम्हात इस दुनिया में आते हैं ना, इससे फिर दो मुख्तलिफ इंसान वजूद में आए और दो मुख्तलिफ अंजाम। ये अल्लाह फिर कहता है पीछे हो जाओ, अल्लाह फिर सबको बीच में से निकाल देता है, अल्लाह कहता है आई विल टेक केयर, ए नबी आप पीछे हो जाए। अल्लाह ने नबी को बताया ही नहीं ये कौन है, आखिर में जाके पता चला, वो अगले हिस्से में हम पढ़ेंगे 11वें पारे में। जब कोई बंदा अल्लाह के किसी मामले में ये दो रुखापन इख्तियार करता है ना, तो ऐसे मौके पे खुद इस्लाम की तरफ अल्लाह जाके खड़ा हो जाता है कि जब ये मुंह फेरेगा ना तो सामने इसको मैं दिखूंगा। और ऐसे लोग कहते खुद को ये हैं कि हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, वो खिदमते दीन का क्रेडिट ले रहे होते हैं। अल्लाह कहते हैं नहीं, ये तुम खिदमते दीन नहीं, ये तुम खिदमते नफ्स कर रहे हो। जो चीज़ मुझे आसान लगी मैंने कर ली, जो मुझे अच्छी लगी कर ली, जो छोड़ दी छोड़ दी। अल्लाह कहते हैं ये अपना ही नहीं है, ये खोटा बंदा है। तो लिहाजा मदीना के मुनाफिकीन में एक तबका कमज़ोर ईमान वाला भी था, वो इस्लाम को हक समझकर उसका इकरार करते थे, इस्लाम की तालीमात पे अमल भी करते थे, लेकिन जहां दुनिया पे कोई चोट पड़ती छोड़ देते। जहां टकराव होता ना, टिक टिक टकराव होता दीन और इस्लाम का, दुनिया और दीन का कह लीजिए, तो फिर फौरन ऐसे वक्त में इस्लामी तकाजे को वो वहां यतीम बच्चे की तरह छोड़कर दुनिया के फायदे की तरफ चल पड़ते और कहते आज मुझे सूट नहीं करता, यहां मैं जा नहीं सकता, ये मेरा मसला है। हालांकि सहाबा किराम जो रदी अल्लाह अन्हुम व रदुआन थे ना, वो मोमिन थे, वो मुजाहिद थे, वो मुहाजिर थे। याद रखिए, या आप मोमिन हैं या आप मुहाजिर हैं या आप मुनाफिक हैं। ये पीछे भी जुमला दिया था, और 11वें पारे की एक आयत पे सब्र किए बैठी हूँ, आपको 5-6 नाम लिखाऊंगी। आपको खुद यहां बैठकर अपना रिजल्ट कार्ड दिखेगा जो आपको डे ऑफ जजमेंट मिलना है, और मुझे भी। हम सबको दुनिया में अपने रिजल्ट नजर आएंगे और आते हैं, ये अलग बात है कि आंखें बंद किए बैठे। बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा वलक़ा माजीरा। तो सहाबा कुर्बानी की सतह वाले इस्लाम को इख्तियार करते थे, और कमज़ोर ईमान वाले और मुनाफिक सिर्फ उतना इस्लाम कबूल करते थे जिसके बाद दुनिया ना बिगड़े। तो ये जो तबूक का मामला ना, ये एक सिंबल है, अलामती तस्वीर है। इससे पता चलता है कि अल्लाह की नज़र में मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। रोम जैसी एक बहुत बड़ी सुपर पावर जो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन थी, उसके मुकाबले पे निकलना, और ज़माना हो शदीद गर्मी का, वो किस्सा मैं आज नहीं सुनाती, आपने बहुत दफ़ा सुना हुआ, और फसल बिल्कुल काटने के करीब, हर किस्म की एडवर्सिटी क्लैमिटी नासाजगारी का मुकाबला करते हुए रदी अल्लाह अन्हु व रदुआन, एक बड़ा लश्कर मुल्क शाम की सरहद के करीब जाके पहुंच रहा है। और फिर मुसलमानों में सामान वाले भी थे, और कुछ के पास तो सामान भी नहीं था, कुछ आज़ाद थे और कुछ अपने हालात में घिरे हुए बेचारे मजबूरियों में बंधे हुए थे। और हुक्म क्या था, इन्फिरू खिफाफम वसिकालन, हर हाल में निकलो इस जंग में, बदर में नहीं, बदर में निकलना फर्ज़े किफाया था, कुछ भी निकल आए ना आपके शहर से तो इट्स ओके, और तबूक में फर्ज़े आइन सबको निकलना है, गुलामों को भी निकलना, आजाद को भी निकलना, सब निकलो, और कोई उजर नहीं। इसलिए कि अल्लाह के हाँ असल में एक वक्त जरूर आता है जिंदगी में, इस्लाम पे कुछ अरसे बाद ये दौर जरूर गुजरता है, और मैं बड़ी बात ना कह दूं, आज का ये दौर ऐसा ही दौर है। आज फिर आप में से रदी अल्लाह अन्हुम व रदुअन चुने जाएंगे, और ये मेरी बात कहीं लिख के डाल दीजिए, आपकी नस्लों में से अबू बकर और उमर निकलेंगे, उस्मान और अली निकलेंगे, अशरा मुबशरा आपकी गोदों में से निकलेंगे, आपकी कोखों में से बदरी सहाबा ने निकलना है, और सो ऑन। बड़ी बातें क्या करूं, ये दौर इस वक्त बेस्ट इन्वेस्टमेंट का टाइम है। देखिए, जब कोई चीज़ कोई नहीं खरीदता ना, तो वो बेकीमत हो जाती है, सेल लग जाती है, 70% पे ले जाओ। इस वक्त इस्लाम का शेयर गिरा हुआ है, आज बहुत सारे लोग कर ही नहीं रहे ये काम, तो जो भी पकड़ेगा ना उसकी तो वो कहना चाहिए लॉटरी निकल आई, टेंडर खुला हुआ है। आप बाहर निकल कर देखिए, आपको जलने की बू आएगी अपने दिल के अंदर से, इतनी जहालत है बाहर, इतना कुछ है। आप पाकिस्तान में जल ले, बाहर की दुनिया में तो जलने वालों के लिए और बड़ा कुछ है। हमारे बच्चे इस्लाम पे नहीं हो रहे, अब डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम है। आज आपके हमारे मुसलमान बच्चे अनाउंस्ड डिक्लेयर्ड, मैंने शायद आपको पीछे किस्सा सुनाया था, पार्टी रख कर एक बच्ची जो मुसलमान थी उसने अनाउंस किया था अपनी फ्रेंड्स में कि आई एम नॉट मुस्लिम एनी मोर, तो किसी और से जो ये खुशखबरी सुननी है तो मुझसे ही सुन लो। और ये मिथ नहीं है, ये एग्जैजुरेशन नहीं, इट्स रियलिटी। पूछिए तो सही, जो लोग वहां बैठे ना, वो सांप के बिल में हाथ रख के बैठे हुए हैं। मैं सोचती हूँ लात वालों को नींद कैसे आती है, और सूत वाले घरों में बैठे हुए को रात को नींद कैसे आती है, जलजला आ गया तो इसी घर में मकबरा ना बन जाए। लेकिन मुसलमान बैठा है, कोई तबलीग नहीं करता, ना 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 बुरा लगता है, माइंड योर बिजनेस, रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर। एक बच्चा मेरे पास आया 8-10 साल का, बड़ा गुप्पा मुप्पा, मेरे फेवरेट बच्चे हैं वो एज के, तो कहेगा मेरी अम्मी मुझे मना करती हैं। किस बात से? वो मेरी क्लास में एक चाइनीज बच्चा है, वो बहुत नाइस है, वो मुझे कहता है तुम इस्लाम की बातें बताओ, तो मैंने उसको बताई, फिर मैंने घर आके मामा को बताया तो मेरी मामा ने मुझे डांटा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ऐसी माँ से तो सौतेली माँ अच्छी थी। शुरू से अपने बच्चे को दबा रही है कि इस्लाम की बात ना करना, क्यों, तुम्हारा नाम चला जाएगा ये वो। मैंने कहा बेटा आप उसको लफ्ज़ इस्लाम नहीं बोलना, कल से गॉड बोलना, गॉड को सब मानते हैं। फिर मैंने उसको कई टिप्स दिए, बेटा आपने इस मौसम पे नहीं बात करनी, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। हम खुद अपने बच्चों की जुबानें काट रहे हैं, गूंगा कर रहे हैं उनको, और क्या फिर ये ना हो जो आज हो रहा, आपको तो अंदाजा भी नहीं है क्या हो रहा। ट्रस्ट मी, इफ यू ट्रस्ट मी आई कैन टेल यू कि दूर से चमकती हुई तस्वीरें, जो सोना दिखता है वो असल में पीतल भी नहीं है। सिर्फ अपनी जान को दुनिया के फायदों के लिए लेकर बैठे हुए हैं, इस्लाम तो हमारा निकल रहा है। तो लिख लीजिए अपने लिए, जो आपके पास होगा वही पेश करेंगे, बैग में जो डालें कल वही निकलता है। तो असल में जन्नत की कीमत ही ये है कि आपने इससे अपनी आखरत को कितना नुकसान दिया और उस वक़्त किया। और जो निफाक है वो उसकी पहचान है, अगर वो देखता है बगैर मेहनत के कोई काम हो रहा है तो इस्लाम की खिदमत करके क्रेडिट ले लेता है, फौरन सामान पैक करना शुरू हो जाता है, हम सफ़र के लिए तैयार होता है। और अगर मुशक्क़त वाला दूर वाला सफ़र हो, जहाँ कोई इज्जत भी नहीं, कामयाबी भी नहीं, कोई माल गनीमत भी नहीं, कुछ नहीं मिलना, वो कहता है नहीं सॉरी मेरे लिए इस वक्त मुश्किल है, अगली दफ़ा पूछिएगा। तो जब कोई दीन की ऐसी ज़रूरत आ जाए और उज़र पेश करके आप एक साइड पे हो जाएं, तो ये इस बात का सबूत है कि आपने अल्लाह ताला को अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊंचा मुकाम नहीं दिया। उज़र पेश करने का मतलब ही ये है कि आपने अभी इसको मकसद नहीं, बस सवाब का ज़रिया बनाया हुआ, हसूले सवाब इसाले सवाब, ये कर लेंगे तो ये होगा। ये इस बात की भी दलील है कि इस्लाम को आपने भी अडॉप्ट नहीं किया। इस्लाम इज़ नॉट योर सेकेंड बेबी, थर्ड बेबी, फोर्थ बेबी, आपके दो बच्चों के साथ तीसरा बेबी इस्लाम नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है। और मुनाफ़क़त असल में अल्लाह ताला से बेपरवाह होकर बंदों की परवाह करने का नाम है, इस जुमले को ना भूलिएगा। अगर जिस बंदे को अल्लाह ताला की कुदरत का यकीन आ जाए, वो कभी अल्लाह ताला से बेनियाज हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए अब आगे आप पढ़ेंगे कि कैसे बहाने और उज़र और क्या कुछ था। अल्लाह ताला आपको मुझे इसमें मैसेज यही देते हैं कि ग़ज़वे तबूक से जो लोग पीछे रह गए ना, उन्होंने असल में क्या नुकसान किया अपना, वो भलाई के कामों से महरूम हो गए, दुश्मन के लिए तरने वाला साबित हुए, और इसी तरह से उन्होंने अपने लिए खुद मुश्किल सही। आप देखिए बाज़ों हम कहते हैं कि हम अपना फ़ायदा करेंगे, फ़ायदा बस अब एक ही चीज़ में है, इस्लाम की खिदमत। तो जिहाद के लिए ना निकलना गुनाह कबीरा साबित हुआ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान को बचा लिया। हाय कौन गर्मी में जाए, इतना लंबा सफ़र, और रास्ते में कोई इंजॉयमेंट भी नहीं थी, स्नैकिंग भी नहीं थी, एसी वाली गाड़ी भी नहीं थी जिसमें आपको सर्दी ही लगने लग जाए। नहीं जाते ऐसे वक्तों पे ऐसे लोग, तो ज़रा सा अपना मुहासबा करिए, मेरा अमल क्या है, क्या मैं आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देती हूँ, क्या मैं हल्के और बोझल हर हाल में अल्लाह की राह में निकलने का इरादा और कोशिश करती हूँ। ये आपके मेरे लिए सवाल है। जितना ज़्यादा अपना मुहासबा खुद करेंगे ना, कल इंशाल्लाह क़यामत के दिन आखिरत में हमारे हिसाब किताब आसान होंगे। अमल के नुक्ते नोट करते हैं, अल्लाह की रज़ा पाने के लिए अल्लाह के रास्ते की तकालीफ को बर्दाश्त करना है, मुश्किलात में दोस्तों की ढारस बंधानी है, अल्लाह की राह में हर हाल में निकलना है, और अल्लाह के रास्ते में निकलने की तैयारी भी करनी है, और डर कर घर नहीं बैठे रहना, माल और जान अल्लाह की खातिर कुर्बान भी करना है। ज़रा सा अपना मुहासबा कीजिए। अगर हमारा ईमान सहाबा जैसा होगा तो उम्मीद की जा सकती है कि बच्चों का ईमान ताबईन जैसा होगा। और अगर हमारा ईमान ताबईन जैसा होगा तो उम्मीद की जा सकती है कि बच्चों का ईमान तबा ताबईन जैसा होगा, इल्ला ये कि अल्लाह हमारे घरों में भी कोई खैर कर दे। याद रखिए, जितना ज़्यादा आप अपना ईमान बढ़ाएंगे, बच्चे उससे आगे जाएंगे इंशाल्लाह, शर्त ये कि आपके आगे हो। अगर आपका कम है तो फिर उनका और कम होता जाएगा। अपना स्टैंडर्ड सेट करें। आप देखिए, हम क्या चाहते हैं कि दौलत हमसे ज़्यादा हो बच्चों की कि कम, तालीम हमसे ज़्यादा हो कि कम, उनका घर हमसे बड़ा हो कि छोटा, हमारे बच्चों की माशरे में इज्जत हमसे कम हो कि ज़्यादा। तो सब कुछ जब ज़्यादा चाहते हैं तो ईमान क्या चाहेंगे, तो उसका तरीका क्या है? लिथार्जिक बैठे रहे, सुस्तों नहीं, आप आगे से आगे बढ़ते जाइए, बच्चों को भी अल्लाह ताला आगे से आगे बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा आप खुद अपने ऊपर मेहनत करेंगे, आपको अपने बच्चों पे मेहनत कम करनी पड़ेगी। ये भी जम बनाइए, जितनी खुद पे मेहनत कर लेंगे उतनी औलादों पे मेहनत कम करनी पड़ेगी। ये आज का जम है, अपने ऊपर मेहनत ज़्यादा कर लीजिए तो बच्चों पे कम करनी पड़ेगी। आज का मसला पता क्या है कि बच्चों पे तो हम बड़ी ही मेहनत कर रहे हैं लेकिन खुद पे नहीं कर रहे, तो नतायज वो नहीं निकल रहे जो हम चाहते हैं। तो मतलूबा नतायज पाने के लिए अपने अमल को और बढ़ा लीजिए। आगे है जी रुकू नंबर 13 आयत 43 से 59। अल्लाह पे तवक्कुल करना है। अफ़ल्लाहु अन कलिमा अज़िन तलहुम, अल्लाह आपको माफ़ फरमा दे, आपने इन्हें क्यों इजाज़त दे दी बग़ैर इसके कि तेरे सामने सच्चे लोग खुल जाएं और तू झूठे लोगों को भी जान ले। अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान और यकीन रखने वाले माली और जानी जिहाद से रुक रहने की कभी भी तुझसे इजाज़त तलब नहीं करेंगे, और अल्लाह ताला परहेजगारों को खूब जानता है। ये इजाज़त तो तुझसे वही तलब करते हैं जिन्हें ना तो अल्लाह पर ईमान है ना आखरत के दिन का यकीन, जिनके दिल शक में पड़े हुए हैं और वो शक ही में सरगर्दा हैं। अगर इनका इरादा जिहाद के लिए निकलने का होता, ये भी नोट करने का नुकता, इरादा ही नहीं था, अगर होता वो इस सफ़र के लिए सामान की तैयारी कर रखते, लेकिन अल्लाह ताला को इनका उठना ही पसंद ना था, इसलिए इन्हें हरकत करने से ही रोक दिया और कह दिया गया कि तुम बैठने वालों के साथ बैठे रहो, अगर ये तुम में मिलकर निकलते भी तो तुम्हारे लिए सिवाय फसाद के और कोई चीज़ ना बढ़ाते। याद रखिए, जो आधे दिल से आपके साथ आएगा ना, वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देगा, वो फितने फसाद डाल डूल के दूसरों को भी बिगाड़ के दो चार लोग अपने साथ लेके आपसे कट जाएगा। अल्लाह ने कहा शुक्र करो ये साथ नहीं गए, इन्होंने वहाँ जाकर तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं करना था बल्कि नुकसान ही था, इनका भी तो सफ़र का खर्च निभाना पड़ता और इनके लिए भी तो ऊँट तैयार करने पड़ते, ये नबी को तसलियाँ दी जा रही हैं। फरमाइए तो तुम में फितने डालने की तलाश में रहते, इनके मानने वाले खुद तुम ही में मौजूद हैं, यानी इनके कुछ स्पाइस मौजूद हैं तुम्हारे अंदर, और अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। ये तो इससे पहले भी फितने की तलाश करते रहे हैं और तेरे लिए कामों को उलट पुलट करते रहे हैं, यहाँ तक कि हक आ पहुँचा और अल्लाह का हुक्म गालिब आ गया, बावजूद इसके कि वो नाखुशी में ही रहे। इनमें से कोई तो कहता है मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे फितने में न डालिए, अगर हो वो फितने में पड़ चुके हैं और यकीनन दोज़ख काफिरों को घेर लेने वाली है। आपको अगर कोई भलाई मिल जाए तो इन्हें बुरा लगता है, और अगर कोई बुराई पहुंच जाए तो ये कहते हैं हमने अपना मामला पहले ही दुरुस्त कर लिया था, फिर तो ये बड़े ही इतराते हुए लौटते हैं, यानी शुक्र करते हैं कि हम पहले ही अलग हो गए थे। आप कह दीजिए कि हमें सिवाय अल्लाह के हमारे हक में लिखे हुए के कोई चीज़ पहुँच ही नहीं सकती, वो हमारा कारसाज और मौला है। मोमिनों को अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। कह दीजिए कि तुम हमारे बारे में जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो दो भलाइयों में से एक है, और हम तुम्हारे हक में इसका इंतज़ार करते हैं कि या अल्लाह ताला अपने पास से तुम्हें कोई सजा दे या हमारे हाथों से, बस एक तरफ तुम मुंतज़िर रहो और दूसरी जानिब हम तुम्हारे साथ मुंतज़िर हैं। कह दीजिए कि तुम खुशी या ना खुशी किसी भी तरह खर्च करो, कबूल तो हरगिज़ ना किया जाएगा, यकीनन तुम फासिक लोग हो, कोई सबब इनके खर्च की कबूलियत के ना होने का इसके सिवा नहीं कि ये अल्लाह और इसके रसूल के मुनकिर हैं और बड़ी काहली यानी सुस्ती से ही नमाज को आते हैं और बुरे दिल से ही खर्च करते हैं, बस आपको इनके माल और औलाद ताज्जुब में ना डाल दें, अल्लाह की चाहत यही है कि इससे इन्हें दुनिया की जिंदगी ही में सजा दे और इनके कुफर ही की हालत में इनकी जाने निकल जाएं। ये अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि तुम्हारी जमात के लोग हैं, हालांकि वो दरअसल तुम्हारे नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि ये डरपोक लोग हैं। अगर ये कोई बचाव की जगह या कोई गार या कोई भी सर घुसाने की जगह पा लें तो अभी इसी तरफ लगाम तोड़कर उल्टे भाग छूटे। इनमें वो भी हैं जो खैराती माल यानी सदके का माल इसकी तकसीम के बारे में आप पर ऐब रखते हैं। अगर इन्हें इसमें कोई मिल जाए तो खुश हैं, और अगर इसमें से ना मिला तो वो फौरन ही बिगड़ खड़े हुए। अगर ये लोग अल्लाह और रसूल के दिए हुए पर खुश रहते और कह देते कि अल्लाह हमें काफ़ी है, अल्लाह हमें अपने फजल से देगा और इसका रसूल भी, हम तो अल्लाह की ज़ात से ही तवक्को रखने वाले हैं। ये थे जी हीले बहाने। जब साथ ना गए तो चुप करके बैठ जाते, लेकिन शक्ल भी तो दिखानी पड़ती है, कभी तो सामना होगा ना। तो जो लोग तबूक में ना गए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर छूटे सच्चे बहाने खड़े। ये सारा रुकू इसमें, बल्कि आगे भी या तजीरू ना 11वां पारा भी इसी पे ही है। पता क्या चला कि मुनाफिक को अपना फायदा प्यारा होता है, वो इस्लाम का भी फायदा जरूर चाहता है, शर्त यह के साथ उसको भी कुछ फायदा मिलता रहे। जहां उसको अपने मफादात पे जद पड़ती दिखती है पीछे हो जाता है। ऐसे वक्त में अब इन लोगों को किसी सहारे की जरूरत होती है। आपने ना जाने की वजह क्या बताएं, कैसे जाकर बताएं, क्या करें, सामना होगा तो क्या करें, और वो है उजर। लेकिन लफ्ज उजर अपोलॉजी, हाय क्या करें, बड़ी मुश्किल है। अपनी बेअमली की खूबसूरत तौजीहात पेश करते हैं और एक जुमला अक्सर बोलती हूँ, आज भी बोल देती हूँ, मजबूरियों में कई लोगों का निफाक छुप जाता है, क्योंकि अगर मजबूरी ना भी होती ना तो उन्होंने जाना फिर भी नहीं था, उन्होंने आना फिर भी नहीं था, उन्होंने वो काम फिर भी नहीं करना था, उनके नसीब में वो नेकी फिर भी नहीं थी। तो लिहाजा नबी सल्लम की नज़रों में ये अच्छा बनना चाहते थे, इस्लाम के साथ अच्छे नहीं थे। सहाबा की भी इनको कोई इतनी परवाह नहीं थी। अल्लाह के नबी को पता लग जाए हमने क्या किया, अल्लाह के नबी के साथ ताल्लुकात अच्छे रखो, बाकी टीम को क्या करना है और इंतज़ामिया की क्या हैसियत है, और अंसारुल्लाह कौन होते हैं और जिम्मेदारान होते होंगे, हम नहीं मानते, हमने कौन सा कोई पेपर फिल किया है जिसको हम अब बाउंडेड है। इस तरह का रवैया होता है। अल्लाह के नबी के सामने आकर ऐसे खूबसूरत अल्फाज में उजर पेश करते और अपनी बेअमली को छुपाना चाहते, लेकिन वो ये भूल जाते थे कि उनका मामला एक इंसान से नहीं, अल्लाह से, जो अंदर बाहर को जानता है, दुनिया में भी राज खोल सकता है और आखिरत में तो वो खोलेगा ही। आप देखिए कि किसी का बेटा बीमार हो या उसकी बेटी की शादी हो, क्या इस वक्त वो अपने आप को फर्स्ट थिंग फिर अपने माल को बचा के रखेगा? हम तो कर्ज लेकर भी खुशियां पूरी करने के नाम पर कूदने वाले लोगों में शामिल होने लग गए अब। बल्कि आम तौर पे तो जिंदगी और उसका माल होता ही इसलिए है कि जब कोई मौका आया और बच्चों की शादियां या अल्लाह ना करे बच्चे की बीमारी, इसीलिए तो जमा करके थोड़ा थोड़ा रखा था कि ऐसे दुख सुख के वक्त में काम आ जाए। बस यहाँ इस्लाम को लिख लें, जब अपने बच्चे की शादी या अपने बच्चे की बीमारी पे आप कुछ बचा के नहीं रखते, और अगर बचाएंगे तो इसका मतलब आपको अपने बच्चे से प्यार ही नहीं है, लगता है ये नेपालक है, ये कोई सौतेला बच्चा आपका नहीं है, चेक करो जाके। जो इस्लाम के साथ ऐसा करें कि जब कुर्बानी देने का वक्त हो वो उजर पेश करें, तो समझ लीजिए कि वो दे आर नॉट सीरियस, संजीदा नहीं है, वो उजर ढूंढेंगे। और जिनके दिल में ईमान मौजे मारा होता है ना, वो तो गोया के इसी दिन के मंतजर होते हैं, आगे सूरत अल-अहज़ाब में हम पढ़ेंगे, वो तो मुंतजर हैं कि अल्लाह कोई वक्त लाए और हम अपनी जान पेश करें। बदर में कुछ जवान बच्चों को मौका नहीं मिला, क्योंकि उनको पता ही नहीं था इतनी बड़ी जंग होनी है, तो वो ओहद में भड़बड़ के आगे आ रहे थे कि पिछला मौका हमसे चला के अब ना चला जाए। तो याद रखिए, झूठे उजर, झूठे बहाने ईमान की कमजोरी और निफाक की अलामत है। जितना एक ईमान वाला अल्लाह से डरता है ना, उतना ही वो मजबूत भी होता है, और फिर वो लोगों से नहीं अल्लाह से क्रेडिट लेना चाहता है। अब होता क्या है कि आखिरत में अजर तो बहुत मिलना है, देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन छू के नजर नहीं आ रहा, इसलिए ऐसे लोग शक में पड़ जाते हैं, पता नहीं मिलना भी है कि नहीं। और इस शक के पर्दे को सहाबा ने फाड़ा और दुनिया में ही रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन के दर्जे पे फायस हो गए। ये जितने इन लोगों के उजर आपने पढ़े ना, एक शख्स था जुद बिन कैस, कहने लगा रूमी औरतें बड़ी खूबसूरत होती हैं तो मैं नहीं जाता जंग में, क्या पता उनमें से फौजियों के साथ कोई औरत आई हुई तो मैं फितने में ना पड़ जाऊँ। अल्लाह कहते हैं पढ़ चुके हो, यही फितना है कि तुम दीन से दूर हो रहे हो, कोई कुछ और कोई कुछ। तो लिखिए दीन के साथ एक मुखलिसाना ताल्लुक होता है और एक मुनाफिकाना। मुखलिसाना क्या है कि दीन के मसले को आप अपना मसला समझें, आप अपनी ज़िंदगी और माल पर सबसे ज़्यादा हक दीन का समझें। और मुनाफिकाना तर्ज ज़िंदगी क्या है कि आप दीन से रस्मी और ज़ाहरी ताल्लुक़ रखें, आप दीन को ज़िंदगी में वो मुकाम ना दें कि आप उसके लिए वक्फ हो जाएं। आप डोनेट कर सकते हैं, ये भी एक जम बन जाएगा आपके लिए शायद, मेरे जो दिल में आ रहा है, आप डोनेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं चीज़ें, डिवोट नहीं होते। डोनेशंस बहुत सारे लोग देते हैं, डिवोशन बहुत थोड़े लोग देते हैं। हिस्सा डालते बहुत सारे लोग हैं, हिस्सा बनते बहुत थोड़े लोग हैं। अगर आप दीन के लिए ख़ुद को वक्फ नहीं करते ना, हर किस्म के नुकसान का ख़तरा मोल लेकर उसकी राह में आगे नहीं बढ़ते तो अभी ताल्लुक कमज़ोर है। कई लोग घर भी अपना डिवोट कर देते हैं, यानी वक्फ करना, पता क्या होता है, मेरे मरने के बाद ये चीज़ उसको मिलेगी, कई लोग करते हैं बाहर की दुनिया में, कईयों ने किया हमें माशाल्लाह, यहाँ भी करते बाहर भी करते। अच्छा, घर को डिवोट कर देंगे, खुद को नहीं करेंगे, मस्जिद बना देंगे, खुद कभी मस्जिद में नमाज पढ़ने ही नहीं आते। अरे हाजी साहब क्या हुआ, आपका बेटा किधर है, वो जो आपने मस्जिद बनाई थी आपका बेटा कभी दिखा ही नहीं। अरे नहीं ना, मेरा बेटा बड़ा मसरूफ़ है, उसके पास कहाँ वक्त है आके नमाज पढ़े। ये ताल्लुक, इसलिए हमेशा अपने आप को बड़े से शीशे में देखा करें। एक होता है कद आवर शीशा, आपके कद के बराबर आप खड़े हों तो बिल्कुल पूरा फिट हो आपको उसमें। इसके बरक्स एक ऐसा शीशा भी होता है जो आपके ईमान के पूरे खदो खाल खोल कर दिखा देता है, और वो जिहाद का मौका होता है। जितना ज़्यादा इस्लाम के लिए आप अपने कामों को पीछे आगे कर ले उतना ही वो सच्चा है। और इस पे तो और बहुत कुछ कहने की ज़रूरत है, बहुत कुछ। अब्दुल्ला बिन उबई जैसा एक शख्स था जो इसी मौके पे सामने आया था, पता ही नहीं चलना था कि अब्दुल्ला के दिल में निफाक है कि नहीं, अगर उहद का मौका ना आता। मुकामे शौत से लौट गया, बदर की जंग की फतह के नतीजे में ये मुसलमान हुआ था, कहता था इस्लाम फैल रहा है, अच्छा मैं इनके अंदर जाकर इनको नुकसान देता हूँ, क्योंकि बाहर से तो भेदी नहीं था ना, खोटा था, इतकादी मुनाफिक था। आगे हम कुछ उनके भी किस्से पढ़ेंगे, लेकिन बस अपने लिए तो मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मतखिर कल भी मिनन निफाक व मली मिनर रिया व लिसानी मिनल कजिब वायुनी मिनल खयानती, क्योंकि जो बात हम दूसरों को कहते हैं हमें सबसे पहले खुद को कहनी है, और जो बात दूसरे हमारी सुन रहे होते हैं ना, हम खुद भी अपनी सुन रहे होते हैं। ये बास गश्त की तरह आवाज़ हैं, ये लफ्ज़ कानों में बाद में गूंजते हैं कहने वालों के कानों में। तो आप और मैं आज ही अगर अपने आप को देख लेंगे तो फ़ायदा होगा, बाद में तो न जाने क्या होना है, किसके साथ होना है। हाँ, इस रास्ते में आप निकल जाएं फिर नाकामी नहीं है, जीत गए तो जीत गए, हार गए भी तो बाजी मात नहीं है। आप पे मुसीबत आती है, आपका अल्लाह की तरफ रुजू बढ़ जाता है, आपको नेमत मिल जाती है, आपका शुक्र बढ़ जाता है, एहसान मंदी आ जाती, शुक्रगुजारी आ जाती, और जितना आप अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक ज़िंदा रखते जाते हैं उतना आप अपने आप को अल्लाह का बंदा समझने लगते हैं। इसके ऊपर रह लीजिए तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपसे बेहतरीन तरीके से राजी भी हो जाता है। एक वक्त आता है कि आपको दुनिया में रह कर भी एहसास होता है, तो अमल के नुक्ते नोट कर लेते हैं। सच्चाई पे कायम रहना है, अल्लाह और आखरत पर ईमान रखना है, अल्लाह पर तवक्कुल रखना है, मुसलमानों की इज्तमाईत को मजबूत करना है, और अल्लाह को अपने लिए काफ़ी समझना है, और अल्लाह ताला की तरफ रग़बत रखनी है इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला से ये दुआ भी किया करें कि वो हमें चुन ले, हमें इस रास्ते में खपा ले, क्योंकि सारी बातें आप देख रहे हैं कि माल 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 की आ रही हैं, और चंद जुमले नोट कीजिए। इस सारे हिस्से को आज पढ़ने के बाद, यहाँ से उठते वक्त या इन बातों को सुनने के बाद, आपने मैंने अपने लिए क्या नियत करनी है, अपना ईमान टेस्ट करवाइए। आपको इस मौजू को सुनकर कैसा लग रहा है? एक लव लेटर लिखे अल्लाह के नाम। प्यारे अल्लाह जी, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, अपने दिल की बातें। के अल्लाह हमारे दिलों को खोट खपट से दूर कर दे, हमें दुनिया के अंदर इतना ना कर दे कि हम तेरे रास्ते में निकलने के काबिल भी ना रहे। और अल्लाह अगर हमारे अंदर भी के निफाक का कोई कीड़ा लग चुका है तो उसको ख़त्म कर दे। अल्लाह अगर तूने हमें माल दिया है ना, तो ये माल हमारे निफाक का सबब नहीं, हमारी तदखीर का सबक बन जाए। याद रखिए, अच्छे बंदे के लिए माल नेमत है और मुनाफे के लिए माल जहमत है। जिसके पास खोने के लिए कुछ होता ही नहीं है, वो बड़ी ही आसानी से इस्लाम को इख्तियार करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें अपना सब कुछ खो देना पड़ता है। मगर जिन लोगों के पास खोने के लिए कुछ होता है ना, वो आमतौर पर मसलियत पसंद हो जाते हैं। इस्लाम के बेज़र्र अहकाम तो फौरन मान लेते हैं, लेकिन जिन तकाज़ों को इख्तियार करने में जान और माल की महरूमी होती है ना, उसमें कुर्बानी की सतह पे मोमिन बनने के लिए ये तैयार नहीं होते। और एक बहुत बड़ा जुमला पारे के एंड पे बोलने वाली हूँ कि कुर्बानी वाले इस्लाम से पीछे रहना ऐसे लोगों की नमाज और रोज़े को भी बेकीमत कर देता है। मस्जिद की इबादत का बहुत गहरा ताल्लुक मस्जिद के बाहर की इबादत से होता है। अगर आपकी मस्जिद से बाहर वाली ज़िंदगी हकीकी दीन से खाली हो, तो मस्जिद के अंदर आप 8 तरावियां पढ़ लें या 20 पढ़ लें, एक बराबर है। घर के करीब की मस्जिद में पढ़ लें या दूर की मस्जिद में पढ़ लें, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेरूह अमल की अल्लाह के नज़दीक कोई कीमत नहीं, जैसे सुनार इमिटेटेड गोल्ड की कोई कीमत नहीं देता। आर्टिफिशियल ज्वेलरी सुनार आपसे 1 रुपए की भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि अल्लाह के यहाँ आपके सच्चे कौल और सच्चे अमल की कदर है, ना कि सच्चा कौल और झूठा अमल। किसी बंदे के पास बहुत दौलत भी हो, बहुत सारे लोग भी हों, तो लोग उसको रश्क से देखते हैं, कहते हैं हाय दौलत भी है, इतने लोग हैं इसके पास, हाय इसके पास इतनी शोहरत है, इतनी इज्जत है, कुछ सोशल मीडिया का पर्सन हो तो और भी फैंस उसके बड़े बन जाएंगे। लेकिन हकीकत यह कि ऐसे लोग बदनसीब हैं कि जिनके पास माल भी हो, जाह भी हो, उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी जमा हो जाएं जो उनकी तारीफें कर करके चाय पिए, लेकिन वो अपने उस माल और अपनी उस दौलत को देकर अल्लाह के यहाँ कुछ आखरत के लिए डिपॉजिट देने वाले ना बन जाए। वो अल्लाह को भूलकर ऐसी चीज़ों में मशगूल रहें यहाँ तक कि मौत आ जाए, और बेरहमी के साथ उनके माल और उनकी उस दौलत से उनको जुदा कर दे, फिर उस वक़्त तो इंसान को जाना ही पड़ेगा। और फिर वो जब वहाँ से निकलता है तो फिर पता लग जाता है कि वो कितने पानी में था। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको मुझे निफाक से निकाल दें। ऑपरेशन था, ऑपरेशन के बाद काफ़ी सेहत हो जाती है, अल्लाह ताला राज़ी रहे। सुबहाना रबी का रबी इज़्ज़त अम्मा यूसिफ़ोन वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।